ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नस्तप्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भावती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम छठे स्कंद पांचवे अध्याय और श्लोक संख्या 39 में। नानु भगवता नित्यम भूतानु ग्रह कातरा रिते त्वं सुहिदागिनं वै वैरं करम वैरिनाम। ननु भगवता नित्यं भूतानु ग्रह कातरा रिते त्वं सुहिदागिनं वै वैरं करम अवैरिनाम। ननु भागवता नित्यं भूतानु ग्रह कातरा रिते त्वं सुहिदागृहिनं वै वैरं करम अवैरिनाम। शब्दार्थ ननु अब भागवता भगवत भक्त नित्यम शाश्वत रूप से भूत अनुग्रह कारत कातरा पतित जीवों को वर देने के लिए अवतरित उत्सुक कृते शिवाय त्वाम तुम्हारे सौहृद्य ध्यानम मैत्री तोड़ने वाले वै निसंदेह वैरम करम तुम शत्रुता उत्पन्न करते हो अवैरिनाम जो शत्रु नहीं है ऐसे पुरुषों के प्रति। अनुवाद। तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त बद जीवों के प्रति अत्यंत दयालु है और दूसरों को लाभ पहुंचाने के इच्छुक रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है, या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो और शत्रुता उत्पन्न करते हो। क्या इन गार्हित कार्यों को करते हुए अपने को भक्त कहने से लज्जित नहीं होते? आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त बद जीवों के प्रति अत्यंत दयालु है और दूसरों को लाभ पहुंचाने के इच्छुक रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है, या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो और शत्रुता उत्पन्न करते हो। क्या इन गर्हित कार्यों को करते हुए अपने को भक्त कहने से लज्जित नहीं होते? ये एक मतलब सवाल है, प्रश्न पूछा जा रहा है नारद मुनि को दक्ष प्रजापति के द्वारा, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नारद मुनि की शिष्य परंपरा के सेवकों को ऐसी निंदाओं को सहन करना पड़ेगा। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से कठोर विधियों का पालन करते हुए युवाओं को भक्त बनाने तथा भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारे सेवा की प्रशंसा ना तो भारत में की जाती है ना ही पाश्चात्य देशों में, जहां हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में ब्राह्मण जाति के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि हम निवेदियों को जो कि म्लेच्छ तथा यवन माने जाते हैं ब्राह्मण पद तक ऊपर उठाते हैं। हम उन्हें तपस्या का प्रतिक्षित देते हैं और उनका यज्ञ उपवित करके उन्हें ब्राह्मण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इस तरह भारत के ब्राह्मण जाति लोग पाश्चात्य जगत में हमारे कार्यकलापों से अत्यधिक अप्रसन्न है। पश्चिम में भी जो युवा इस आंदोलन में शामिल होते हैं उनके माता पिता भी हमारे शत्रु बन गए हैं। शत्रु बनाने हमारा कार्य नहीं है, शत्रु बनाना हमारा कार्य नहीं है, किंतु विधि ही ऐसी है कि अभक्तगण हमारे प्रति सदैव शत्रुभाव रखेंगे। फिर भी जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भक्त को सहिष्णु तथा दयालु होने ही होना चाहिए। प्रचार कार्य में रत भक्तगणों को अज्ञानी लोगों द्वारा आरोपित होने के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर भी उन्हें पतित बद जीवों के प्रति अत्यंत दयालु रहना चाहिए। यदि नारद मुनि की गुरु शिष्य परंपरा का कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता है तो उसकी सेवा अवश्य ही मान्य होगी, जैसा कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदश्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मयि वशसि अशंसायः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में मेरे पास वापस आता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। हमें भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते रहना है और शत्रुओं से डरना नहीं है। हमारा एकमात्र कर्तव्य अपने इस प्रचार द्वारा जो श्री चैतन्य तथा भगवान कृष्ण द्वारा सेवा के रूप में स्वीकार किया जाएगा भगवान को तुष्ट करना है। इस श्लोक में सुहृद नियमम मतलब मैत्री तोड़ने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। चूंकि नारद मुनि तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के सदैव मैत्री तथा पारिवारिक जीवन को छिन्न भिन्न करते हैं, अतएव कभी कभी उन्हें सुहृदनम अर्थात संबंधियों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने वाला कहा जाता है। वस्तुतः ऐसे भक्त हर जीव के मित्र है, सुहृद सर्वभूतानाम, किंतु ब्रह्मवश उन्हें शत्रु समझा जाता है। प्रचार कार्य कठिन तथा अकृतज्ञ कार्य हो सकता है, किंतु प्रचारक को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और भौतिकवादी व्यक्तियों से निडर रहना चाहिए। ओम ज्ञाना तिमिरंदस्य ज्ञानंजना सलाखया चक्षुरुम्लितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्तम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाते स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपादकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं सहगण सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा। वैसे मैं तो योग्य नहीं हूँ यहाँ पर बैठने के लिए, फिर भी सेवा के तौर पे मैं यहाँ भागवत का सेवा करने के लिए बैठा हुआ हूँ। और वैसे मैं भारत के भी नहीं हूँ, मॉरिशस का हूँ। और वैसे आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, कितने वरिष्ठ भक्त हैं, माता हैं, प्रभु लोग, ताकि मैं आप कुछ बोल सकूं। तो पिछले एक महीने से आप लोग ये प्रसंग सुनते आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भागवत वैसे हर एक प्रसंग में बहुत सारे शिक्षाएं छुपी होती हैं। तो इस प्रसंग में हम लोग सुन रहे हैं कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये उनका एक बहुत ही विशेष उपाधि है ब्रह्मा का पुत्र होना। और दूसरी बात, दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ा पदवी जब किसी को प्राप्त हो जाता है तो उनमें अहंकार जो है ना झलक उठते हैं। तो दक्ष प्रजापति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति सिर्फ प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष नहीं थे, साथ साथ संहिताज, स्मृतिज इत्यादि बहुत ही बढ़िया ढंग से रचते थे। आदेश देने में भी बहुत एक्सपर्ट थे, वो दक्ष थे, माहिर थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपराध करने में भी बहुत माहिर थे। तो वैसे उनका उद्देश्य बहुत ही ठीक था देखा जाए तो, क्योंकि वो उनका जो हर्याशस जो 10,000 पुत्र जो पैदा किए थे उनको वो नारायण सरस में भेज दिया तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए ताकि उनको सभी प्रकार का शक्ति इत्यादि प्राप्त हो और वो अपना फिर गृहस्थ कार्य में लग जाए इत्यादि इत्यादि। फिर वो निष्फल रहे क्योंकि नारद जी वहां पर आकर के उनका प्रचार किया, आप लोग सुन चुके हैं। फिर 10,000 के बाद वे 1,000 पुत्र उत्पन्न किए जो सवलाश्वस नाम से प्रसिद्ध थे, उनको भी नारद मुनि प्रचार किया, उनको भी भक्त बना दिया। वैसे उनका उद्देश्य ठीक था, लेकिन नारद का उद्देश्य उनसे ज्यादा श्रेष्ठ था। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के धाम वापस जाना। एतवम संख्या योगभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसम अंते नारायण स्मृति। आप अपने बेटे को या अपने पुत्री को इस संसार के जितने भी उपाधि है, मतलब जो योग्यता है भौतिक योग्यता, क्यों ना बना दें, क्यों ना दे दें उनको, लेकिन जब तक आप उसको भगवान का शिक्षा नहीं देंगे तब तक कोई लाभ नहीं है। तो नारद मुनि घुमा फिरा करके ये शिक्षा नहीं दे रहे थे, सीधा सीधा मतलब कहाँ गृहस्थ में फंसोगे भैया, डायरेक्ट ब्रह्मचारी बन जाओ और भगवान के धाम वापस चले जाओ, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि बताया गया है कि एक तो ये मानव शरीर ही बहुत ही दुर्लभ है, ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। आप लोग शायद पंचम स्कंद में सुन चुके हैं कि किस प्रकार देवताएं भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि कल्पायुषाम स्थान जया पुनर्भवत क्षणायुषम भारत पूजयो वरम चने न मृत्ये न कृतम मनस्विना संयस्य शम्यान्ति अभयम पदम हरे। देवता लोग प्रार्थना करें भगवान से कि हे प्रभु हमको कल्प आयु नहीं चाहिए, कल्प आयु मतलब ब्रह्मा की आयु, आप लोग ब्रह्मा की आयु से परिचित हैं, ब्रह्मा का 12 दिन एक कल्प माना जाता है, एक कल्प का मतलब होता है 1,000 दिव्य युग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग को एक दिव्य युग बताया जाता है। तो 1,000 बार जब त्रेता द्वापर कलयुग जब गुजर जाता है तो उसको एक कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का अभी सिर्फ 12 घंटा, तो हम लोगों के दृष्टिकोण से ब्रह्मा का जन्म तो ऐसा लगता है कि वो तो मरते ही नहीं है, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से ब्रह्मा की आयु क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए देवी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें कल्प आयु नहीं चाहिए, कल्प आयु शांत क्षण, क्योंकि कल्प आयु प्राप्त करने के बाद भी फिर से संसार में आना पड़ता है। कल्प आयुषाम स्थान जयात पुनर्भवत क्षणायुषम भारत भूजयो वरम। हे प्रभु यदि आप हमको देना है तो हमको भारत में जन्म दीजिए, वो भी क्षण आयु 50 या 60 साल, बस क्षण आयु चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षण आयु भारत में मिल जाए तो हम लोग फिर संन्यास्य, फिर हम लोग पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाएंगे और बहुत ही कम समय आपके धाम वापस लौट जाएंगे। तो ये उद्देश्य से नारद मुनि हर जगह पर जाकर के प्रचार करता है। तो बताया गया है कि ये जो संस्था है इस्कॉन का, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये संस्था, इस संस्था का मूल उद्देश्य ही है प्रचार करना। और प्रभुपाद जी बहुत ही मतलब निडर होकर के प्रचार करते थे, और जब वो प्रचार कर रहे थे तो भारत में भी और विदेश में भी बहुत सारे उनके जो शत्रु हो गए थे। यहां तक कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जिस युवतियों को या युवाओं को भक्त बना रहे थे उनके माता पिता भी उनके शत्रु बन गए थे। और एक भक्त थे जिसका नाम था, वैसे दो भाई थे वे, ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, शायद आप ये दो महानुभव से परिचित हैं। तो ये दोनों भाई थे और ये प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि के माता प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए और प्रभुपाद जी ने उनका स्वागत किया। और फिर उन्होंने कहा प्रभुपाद जी से, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप युवाओं को आपके भक्त मतलब भक्त बना रहे हैं, आपके सेवक बना रहे हैं। प्रभुपाद फिर जवाब देते हैं कि मेरा तो कार्य ही है, काम ही है प्रचार करना, यदि बदले में आपका पुत्र मेरे भक्त बन जाता है, इस संस्था में मतलब एक सदस्य बन जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। देखिए आपके दोनों बेटे यहां बैठे हैं, लेकर जाओ, लेकर जाए आप उन लोगों को। फिर उनके माता गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद प्रभु से कहा, चलो बेटा चलो। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, हम लोगों को अपना असली आध्यात्मिक पिता प्राप्त हो गया है, अब हम लोग घर नहीं जाएंगे। कितने समझाने के बाद भी गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद जी नहीं गए। फिर निराश होकर के उनके माँ प्रभुपाद जी से कहते हैं कि लगता है तू उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि वो लोग अब हमारे साथ नहीं आने वाले हैं, अब मैं चलता हूं। तो जब जा रहे थे फिर प्रभुपाद जी ने कहा, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हैं माता जी, इतने मतलब एक तो पहली बार मंदिर आए हैं और मंदिर आने का उद्देश्य यह है कि भगवान का दर्शन करना, भक्तों का दर्शन करना और साथ साथ कुछ दान देना, तो आप कुछ दान दीजिए। तो फिर उनके माता कहते हैं, मैं दो पुत्र को दान दे चुका हूं, इतना बड़ा दान और क्या हो सकता है, मैं अपने दो पुत्र को दान दे दिया हूं। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे उनके मतलब ओपोजिशन हो गए थे। तो बताया गया है कि प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य था कि भक्त बनाना और इस आंदोलन का विस्तार करना। शुरू शुरू में 3 महीने के जो भक्त होते थे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता था, 6 महीने के भक्त को प्रेसिडेंट बनाया जाता था, क्योंकि भक्त की कमी थी उस समय। प्रभुपाद जी उनको ट्रेनिंग देते थे और बना देते थे, लीडर बना देते थे और आदेश देते थे कि आप फलाने देश जाओ, वहां पर टेंपल सेंटर खोलो और प्रचार करो। फिर लेकिन उनका तो उस समय मतलब भक्त लोग थोड़ा ज्यादा स्टडी नहीं करते थे क्योंकि प्रचार कार्य में सब लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आज इस्कॉन एस्टैब्लिश हो गए हैं, देश में विदेश में हर जगह पर इस्कॉन एस्टैब्लिश हो गए हैं, सुचारू ढंग से चल रहा है। और प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी लोग इस संस्था का सदस्य बनते हैं सब लोगों को उनके पुस्तक का अध्ययन करके ब्राह्मण बनना है और फिर प्रचार करना है, प्रसार और फिर प्रचार। प्रसार का मतलब होता है खुद सीखना चाहिए फिर बाद में सिखाना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। तो नए नए जब कोई भक्त बनता है तो फिर यदि उनको शिक्षित नहीं किया गया तो फिर वो धीरे धीरे अपराध कर बैठेगा, और अपराध जैसे अपराध करेगा तो फिर इस संस्था से फिर उनका दिल जो है ना नहीं लगेगा, फिर चला जाएगा। तो इसीलिए जो नए भक्त होते हैं उन लोगों को शिक्षित होना चाहिए, जिस प्रकार रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मनसस्तंद्रिया है, कहते हैं कि कृष्णस्थि यश गिरितम मनुष्य, मतलब जो नए नए जो भक्त होते हैं, जो इसको बोलते हैं मतलब नए भक्त, नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, उनको रूप गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि वह हरिनाम ले चुके हैं तो उनको मन से आदर करना चाहिए। हालांकि वो मतलब गलती करेगी क्योंकि वो नया भक्त है, तो हम लोगों को जो थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर चुके हैं उनको मन से रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और दीक्षा स्थिति मतलब जो दीक्षा ले चुके हैं, जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं, जो आर्चा विग्रह की सेवा करें, ऐसे भक्त के प्रति मतलब नमस्कार करना चाहिए। और जो निंदादि शून्य हृदयम, निंदादि शून्य हृदयम इप्सिता संग लब्ध्या, और जो भक्त उत्तम अधिकारी में स्थित हो गए हैं मतलब भागवत भक्त बन गए हैं, और कैसे पता चलेगा कि वो उत्तम अधिकारी भक्त है, उसका रिलायबल सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि वो कनिष्ठा है, मध्यमा है या उत्तमा है, उनके व्यवहार के अनुसार। मतलब निंदादि शून्य हृदयम, उसके हृदय जो है वो बिल्कुल निंदाओं से शून्य होता है, उनके पास समय ही नहीं है मतलब ग्राम्य कथा बोलने के लिए या चुगली निंदा करने के लिए किसी का, और उनमें मतलब नया भक्त बनाने की समर्थ भी होते हैं। ऐसे सारे मतलब कुछ गुण बताए गए हैं जो जो उत्तम अधिकारी भक्त है। अब यदि ऐसे भक्त का यदि मिल जाए कहीं या दिखाई दे रहा है मंदिर में इत्यादि, तो ऐसे भक्त का संग करना चाहिए और सेवा ढूंढते रहना चाहिए कि कब सेवा का अवसर मिले। तो क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन, तत्वदर्शियों का कहना है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधस सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पटस्तत् कवयो वदंती। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन अत्यंत कठिन है, आध्यात्मिक जीवन अत्यंत कठिन है। कठोपनिषद उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शेविंग करता है, शेविंग करते हैं ना, तो शेविंग करते समय आप अपना जो त्वचा है आप उसको मतलब ऐसे शेविंग नहीं करते हैं कि आप चाकू लेकर के जैसे गाजर मूली को छील रहे हैं, ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करेंगे तो पूरा त्वचा खराब कर देंगे आप। पूरी सावधानी के साथ शेविंग किया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन भी बहुत ही सावधानी की मतलब सावधानी के साथ करनी चाहिए, खास तौर पे भक्तों के प्रति व्यवहार। भक्तों के प्रति व्यवहार से क्या हो जाता है कि अपराध हो जाता है, जान के या अनजान में भी अपराध हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम लोगों को पता चले कि कनिष्ठा कौन है, मध्यम कौन है और उत्तम अधिकारी कौन है। और प्रभुपाद जी इस पर बल देते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको कनिष्ठा अधिकारी के लेवल में नहीं रहना चाहिए, धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है, कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंचना है, क्योंकि कनिष्ठाधिकारी भक्त जो है गिर जाता है, गिरने का पूरी संभावना रहती है। क्योंकि जैसे आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो पहला सीढ़ी में आप कदम रखते हैं और उसी में आप खड़े रहते हैं, एक घंटे, दो घंटे, एक दिन, दो दिन, तो थक जाएंगे, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है ना, आप लोग समझ रहे हैं? या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो इसलिए कनिष्ठा अधिकारी उस सीढ़ी के समान है कि आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं या नीचे गिरना चाहते हैं। तो पूरी सावधानी के साथ यदि आध्यात्मिक जीवन हम लोग करेंगे तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति निश्चित रूप से करेंगे। और प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि प्रचार में बहुत रिस्क लेना पड़ता है, और प्रचार कार्य क्या है कि प्रचार कार्य वो ऐसा कार्य है जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रचार कार्य में। किसका इन्वेस्ट? ब्लड, खून, बहुत खून का इन्वेस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हैं? बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, एक भक्त बनाने में बहुत सारे मेहनत देनी पड़ती है। और बदले में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बदले में आपको कोई व्यक्ति धन्यवाद नहीं कहने वाला है, इट इज थैंकलेस जॉब, बदले में कोई नहीं बोलेगा कि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, आपके कृपा से हम लोग आज कृष्ण आंदोलन में आप मतलब ज्वाइन मतलब आए हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रचार करते रहना चाहिए। जैसे प्रचार कार्य में प्रभुपाद जी कहा करते थे, आज के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो योग्य, जो दो योग्यता होनी चाहिए प्रचार कार्य में, कौन बताएगा क्या क्या है वो दो योग्यता प्रचारों को इस तात्पर्य के अनुसार? सहनशीलता और दूसरा एक तो हाँ दया, दया और सहनशीलता। एक प्रचारक को ये योग्यता होनी चाहिए, मतलब ये गुण होनी चाहिए, सहनशीलता और दया। प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रसंगों में उदाहरण दिया करते थे, जैसे जीसस क्राइस्ट बहुत दयालु व्यक्ति थे, यहां तक कि उनके शिष्य ने ही उनको सूली पर चढ़ा दिया था, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये अज्ञानी लोग हैं, इनको माफ कीजिए। हरिदास ठाकुर, जैसे कल हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस था, हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में पिटवाया गया था, लेकिन फिर भी वो भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि उनको क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो दया दिखानी चाहिए, हालांकि बदले में आपको कोई धन्यवाद नहीं कह रहा है या आपकी निंदा हो रही है। जैसे आज के श्लोकों में नारद मुनि को निंदित किया जा रहा है, कह रहे कि आपको छोड़ के, कह रहे कि आपको छोड़ के, तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त बदजीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मतलब नारद को छोड़ के बाकी जो भक्त हैं वो लोग दयालु हैं, और देखा जाए तो नारद मुनि जैसे भक्त है ही नहीं। नारद मुनि उसको कहते हैं स्पेसमैन, मतलब वो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नारद तो स्पेसमैन था और हम लोग स्पेस आउटमैन हैं। हम लोगों को जब समय मिलता है तो हम लोग सो जाते हैं और कहीं कहीं मतलब माया में पड़ जाते हैं, स्पेस आउट रहते हैं। लेकिन जो पक्का प्रचारक है वो या स्टडी कर रहे हैं या कुछ सुन रहा है या भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, समय ही नहीं मिलता है। तो नारद मुनि तो मतलब बहुत ही दयालु व्यक्ति है और हर प्रचारक को होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नारद मुनि की शिष्य परंपरा के सेवकों को ऐसे निंदाओं को सहन करना पड़ेगा जो नारद के परंपरा से चली आ रही है। जैसे हम लोग भी ब्राह्मण गौड़ वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो ब्रह्मा ने ये ज्ञान नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, हम इसी परंपरा से चले आ रहे हैं। तो हम लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए कि यदि हम लोग प्रचार करेंगे तो निंदा हम लोगों को जरूर मिलेगा, लोग हम लोग ही निंदा करेंगे। तो क्या करना चाहिए बदले में? सहनशीलता, यू हैव टू टॉलरेट, मतलब हम लोगों को सहन करना चाहिए। कितनी सहन करना चाहिए? जितना हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, वैष्णव था, तो वो डेली मतलब रोज जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, सुबह सुबह जाते थे। तो एक व्यक्ति उनसे द्वेष करता था और वो अपने रूफ में खड़े होकर के उसको देखता रहता था, और वैसे जैसे वो गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर वो थूक देता था, थूकते थे, और वो भक्त फिर से दूसरी बार जाकर के गंगा में स्नान करके फिर लौटते थे, फिर तीसरी बार वो व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति, फिर से उसके ऊपर थूक देते थे। और ऐसे उन्होंने कितने दफा ऐसा किया, तकरीबन 100 से अधिक दफा उनके ऊपर थूक दिया। आप मतलब सोच सकते हैं कि यदि हम पर ये सब होगा तो क्या करेंगे हम लोग? वो व्यक्ति बार बार जाकर के गंगा में स्नान करके आ रहे हैं, बार बार जाकर के गंगा में स्नान करते आ रहे हैं, फिर अंत में वो व्यक्ति उस वैष्णव के चरण में गिर के कहा कि क्षमा प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। तो उन्होंने कहा क्षमा नहीं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कृपा से मुझे 100 बार गंगा में स्नान करने को मिला। देखिए बदले का एक भक्त का रिएक्शन, वो भगवान की कृपा मान रहे हैं, उसको वो भगवान की कृपा मान रहे हैं कि आपके कृपा से मुझे गंगा में 100 बार डुबकी लगाना पड़ा। तो जो भक्त होते हैं वो पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव नहीं देखते हैं, वो भगवान की कृपा ही मानते हैं। तो दया है, हम लोग बात कर रहे थे सहनशीलता और दया। दया तीन प्रकार के दया बताए गए हैं। एक तो होते हैं मानसिक दया, मतलब लोगों को शिक्षा देना, एकेडमिक एजुकेशन है, लोगों को शिक्षा मुफ्त में शिक्षा देना, इसको कहते हैं मानसिक दया। और दूसरी प्रकार की दया कहते हैं देह दया, लोगों को क्या कपड़ा देना, दान के रूप में कपड़ा देना, खाना देना, भोजन देना, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये देह दया है। और तीसरा दया है जीव दया। तो ये जीव दया सबसे महत्वपूर्ण दया है और आज की तारीख में इस्कॉन ये कार्य कर रहा है, जीव पर दया कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत दे करके लोगों को। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम सब लोगों को उनका ग्रंथ का ध्यान करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करेंगे और फिर इसका सही ढंग से प्रचार करेंगे, लोगों को ये ज्ञान देंगे कि समय का सदुपयोग कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनिए। आज के तारीख में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार लोग दक्ष के माफी लोग अपने बच्चों को एक्सपर्ट बना रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन का परवाह नहीं कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक बना रहे हैं अपने बच्चों को। तो कम से कम अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। और इस्कॉन में ये सारी सुविधाएं हैं, गुरुकुल है जो बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। नहीं तो इस संसार में हम लोग देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है उनको बहुत सारे कठिनाई झेलना पड़ रहा है और वे अपने बेटों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि बड़े होकर के तू भी कठिनाई झेलो, दक्ष के माफी। एक बार एक व्यक्ति था जिसको बोलते हैं वुड कटर, लकड़हारा। जो व्यक्ति क्या करता था, लकड़ी काट करके बेचता था, 1 घंटे 2 घंटे मतलब थोड़ा सा लकड़ी काट देता था और बेचता था, और बाकी दिनों मतलब बाकी जो समय था वो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे करता था। तो एक दिन उनका एक दोस्त ने कहा कि भैया तू कितने घंटे काम करते हो। तो व्यक्ति ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, 1 घंटे ढूंढने में काटने में और 1 घंटे बेचने में, 2 घंटे। और फिर क्या, और बाकी जो समय रह जाता है वो भगवान के भक्ति करते हैं। अरे नहीं बंधु, कल से आप 4 घंटा काम करो, ठीक है ना, कल से 4 घंटे काम करो। तो वो भक्त ने कहा कि क्यों। अरे 4 घंटे काम करोगे तो ज्यादा मतलब प्रॉफिट कमाओगे, फिर प्रॉफिट कमाने से फिर क्या होगा। अरे भैया 2 गुना पैसा लोगे तो फिर तुम्हारा मतलब फिर तू 8 घंटा काम करना शुरू करोगे। अच्छा फिर, अरे फिर क्या करोगे, फिर देखोगे कि हफ्ते में 1 महीने में बहुत सारे धन कमा लोगे। उससे क्या होगा भैया, उससे फिर तुम मतलब जो एम्प्लॉय है उसको मतलब और लोगों को एम्प्लॉय कर दोगे काम में, 1-2-4 व्यक्ति लगा दोगे काम में, प्रॉफिट और बढ़ेगा। फिर अरे फिर क्या, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सिर्फ आदेश दोगे, इतने सारे कम कर्मचारी होंगे तुम्हारे, बॉस बन जाओगे, और फिर क्या भैया, फिर तो फिर तू बूढ़े हो जाओगे, फिर बैठ करके आराम से भजन करना। फिर वो भक्त ने कहा ठहरो ठहरो एक मिनट, यदि अंत में भजन ही करना है, अंत में आराम करना है और भजन करना है, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी भी कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। यदि अंत में भजन करेंगे, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग बोलेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे तो देव पूजा करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे देव पूजा करेंगे, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तो देह पूजा क्या करोगे, देह पूजा ही में लग जाओगे। इसलिए जब तक ताकत है भक्ति करो, मैक्सिमम मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, क्योंकि वृद्धावस्था में भक्ति नहीं होगी, वृद्धावस्था में कथा नहीं सुनी जाएगी, वृद्धावस्था में जप नहीं होगा, होगा कठिनाई के साथ। हाँ यदि अभ्यास रहा होगा तो ठीक से चलेगी, अभ्यास रहा होगा ठीक से चलेगी, और यदि अभ्यास नहीं हुआ तो फिर काम नहीं बनेगी। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरायुध्य च मयर पिता मनोबुद्धिर मामे वशसी असंसायः। भगवान कहते हैं कि युद्ध के साथ साथ तुम मेरा स्मरण भी किया करो कृष्ण अर्जुन, युद्ध के साथ साथ मेरा स्मरण भी किया करो, अपने काम में लगे हो ना, जैसे गृहस्थ लोग होते हैं अपने काम में लगे हैं, धंधे में लगे हैं, तो साथ साथ काम में लगने के साथ साथ भक्ति भी कीजिए, क्योंकि भक्ति भी लगा रहेगा तो कम से कम ये आशा से हम लोग जिएंगे कि भक्ति भी हो रही है साथ साथ। और यदि हम लोग ये सोच करके चलेंगे कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब फिर भक्ति थोड़ा गहराई से लेंगे, सीरियस से लेंगे, अभी क्या जल्दी है ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, अभी हम लोग स्लो जा रहे हैं, जल्दी क्या है प्रभु जी, अभी स्लो चलते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तब जरा गाड़ी बढ़ाएंगे, थोड़ी बढ़े गाड़ी है, अभ्यास योगा युक्ते ना, यदि जवानी में अभ्यास नहीं होगी तो बुढ़ापा में कैसे अभ्यास होगी। तो यही संदेश जो है ना नारद मुनि दक्ष प्रजापति को देना चाहते हैं हम लोगों के जरिए, मतलब दक्ष प्रजापति के जरिए हम लोगों को ये ज्ञान नारद जी दे रहे हैं ना। इतनी बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी उनके अकल मारे गए थी, वो नारद को कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त, मतलब वो नारद को, नारद की निंदा कर रहे हैं, नारद को शाप दे रहे हैं, नारद को शाप दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस्कॉन में जो नारद के संप्रदाय से चले आ रहे हैं हम लोगों को भी ये शाप स्वीकार करना पड़ेगा। और आज के तारीख में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी अपने मंदिर में एक दो दिन से ज्यादा नहीं टिकते थे, और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य है, वे लोग भी जो आज वर्तमान गुरु हैं, वे लोग भी मंदिर में एक दो दिन रहते हैं और फिर दूसरे मंदिर में चले जाते हैं, तीसरे मंदिर में चला, देश में या विदेश में घूमते रहते हैं, समझ रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैसे ये शाप नहीं है, ये तो वरदान है देखा जाए तो, है रमता जोगी बहता पानी, क्योंकि एक ही स्थान में रहेंगे तो शायद हम लोग आसक्त हो जाएंगे उससे और फिर प्रगति में बाधा हो जाएगी। तो मैं यहीं पर कथा को विराम देना चाहूंगा, किसी का कोई मतलब टीका है या प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, वैसे जब तक माइक आ रहे हैं, हाँ ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। फिर से अपना प्रश्न। किस तरह के प्रचार में? हाँ, तो मैं ये नहीं कहा था कि नए भक्त को प्रचार में नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि भक्त को प्रचार में जाना चाहिए जब ट्रेनिंग, एक ही बात है, लेकिन मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। खैर, प्रभु जी का प्रश्न है कि किस तरह का, मतलब नए भक्त किस तरह के प्रचार में नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए। देखा जाए तो हमारी संस्था में हर सेवा जो है प्रचार, हर सेवा जो है प्रचार ही है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये विशाल मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर। यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं तो भगवान का विग्रह को देख करके, जैसे वो भगवान के जो श्रृंगार किया जाते हैं, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा बलराम गौर निताय, तो ये बहुत ही बड़ा प्रचार है। भगवान का अर्चा विग्रह की श्रृंगार बहुत ही बड़ा प्रचार है। लोग भगवान की श्रृंगार को देख करके भक्त बन रहे हैं, क्योंकि अन्य मंदिरों में ऐसा श्रृंगार तो देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ इस्कॉन मंदिर में आकर के, और कुछ कुछ मंदिर होंगे शायद जो अर्चा विग्रह की सेवा दैनिक रूप से चलती है, श्रृंगार चलती है, लेकिन इस्कॉन के हर केंद्र में, हर मंदिर में भगवान का श्रृंगार होता है। और सुचारू ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से श्रृंगार भक्त लोग करते हैं, और देखने मात्र से शायद कोई लोग भक्त बन सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रचार है। फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम भी एक बहुत बड़ा प्रचार है। सफाई भी एक प्रचार है। प्रभुपाद जी जब हर अपने मंदिर में जाया करता था तो अपने उंगली से देखते थे, मतलब दीवार में या आल्टर में हाथ लगाते थे, देखते थे, मतलब इसमें कुछ दस्त तो है ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे कि उनके मंदिर बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का प्रचार है। बाहर में हम लोग, बाहर में यदि लोग आ रहे हैं तो मंदिर में एंट्री करने से पहले कितने, मतलब वृंदावन तो खैर, वृंदावन तो अलग ही स्थान है, यहाँ तो रज, हर जगह पर रज है, लेकिन अन्य स्थानों में गंदगियाँ थाली फैली होती हैं। यदि ऐसे वो इस्कॉन मंदिर में एंट्री करता है तो इतना साफ सुथरा होता है कि सिर्फ ये देख करके लोग भक्त बन सकता है, समझ रहे हैं? तो अनेक प्रकार का, मतलब इस सब को प्रचार ही कहते हैं। और जिस प्रचार के बारे में हम लोग अभी कह रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो है, मतलब प्रभुपाद जी के जो संदेश है, जो भागवत संदेश है, जो गीता का जो संदेश है, उसको हम लोगों को पढ़ना है और लोगों में बांटना है। हाँ जरूर, हाँ जरूर जाना चाहिए, हाँ जरूर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रचार तो करते रहना चाहिए, नहीं? हम लोग प्रचार करते हैं मॉरिशस में, वहां पर मैं नाम हता डायरेक्टर हूँ मॉरिशस के एक मंदिर में, तो वहां पर हम लोगों का तकरीबन 22-25 नामहत केंद्र हैं, और वहां पर 15-20 भक्त रेगुलर, मतलब हर रोज इस 25 नामहत में मिलते हैं और प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद जी का भविष्यवाणी था कि मॉरिशस विल बिकम द फर्स्ट कृष्ण कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब मॉरिशस दो बार आए थे 1945 में, मतलब सॉरी 1975 में, तो प्रभुपाद जी मॉरिशस के बारे में कहा था कि मॉरिशस विल बिकम द फर्स्ट कृष्ण कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ आप लोग भी आइए, जैसे अभी राधा श्याम सुंदर जी वहाँ पर होकर के आए, और जनार्दन महाराज भी आते रहते हैं, राधा गोविंद महाराज भी आते थे पहले, तो आप लोग भी कभी आइए, और जो वृंदावन वासी आप लोग मॉरिशस में आइए और वहाँ पर आप लोग कृपा कीजिए, फिर आप हम लोगों को मतलब हेल्प कीजिए ताकि प्रभुपाद जी का जो भविष्यवाणी था मॉरिशस में वो साकार हो सके। जरूर, राम नाम, मतलब जो व्यक्ति राम नाम बोलकर शरीर त्यागेगा निश्चित रूप से उसको भगवान के धाम प्राप्त होगा। निश्चित रूप से। और जो व्यक्ति वृंदावन में रहते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या, यहाँ के प्राणी तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसा दुर्लभ। हाँ माता जी, सहनशीलता और कृपा दया। अच्छा, दो चीजों को कैसे अपना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, क्योंकि प्रचारक को ये दो चीज चाहिए उनके जीवन में, सहनशीलता और दया। उनको अपने बारे में ही सोचना चाहिए कि प्रभुपाद की कृपा से वो भक्त बने या भक्तों की कृपा से वो भक्त बने। अब उनका मतलब जिम्मेदारी होता है कि जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को जो जो ये संस्था दिए हैं हम उनके ऋणी हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये ऋण आप अपने जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे। जो कृपा जो दया प्रभुपाद जी ने हम सब लोगों पर किए हैं, ये जो ऋण है हम प्रभुपाद जी के प्रति, ये ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे हम लोग। हाँ, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये तो नहीं उतार पाएंगे आप, लेकिन हमको खुश कर सकते हैं आप लोग प्रचार करके। तो प्रचार कार्य अपने आप में दया है, प्रचार कार्य अपने आप में सहनशीलता है। जैसे एक बार एक एक शहर में हरिनाम चल रहा था, तो उस हरिनाम एक शहर में मतलब डेली रूप से मतलब हर वीक में वो हरिनाम चलता था मार्केट में, मतलब क्या बोलते हैं टाउन में चलता था वो। तो भक्त लोग करताल लेकर के मृदंग लेकर के गाते, मतलब जैसे हरिनाम होता है। तो वहां पर एक व्यक्ति अपने दुकान से बाहर निकलता है और एक छड़ी लेकर के खड़े रहते थे, और जैसे भक्त वहां से गुजरता था वो तो छड़ी से उसको मारते थे। और जो जो भक्त जो आखिर में जो मतलब अंत में जो भक्त ऐसे घूम फिर के जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, उसको तो देखना है हरिनाम में नहीं, खैर वो भी शामिल है। तो वो जो अंत व्यक्ति जो आखिरी व्यक्ति भक्त जो अब वो गुजर रहा है उसको तो बहुत दो चार ज्यादा लगता था। तो वो पहला दिन उसको दो चार मतलब डंडा लगा, फिर अगले बार जब हरिनाम वहां से गुजरे तो वो व्यक्ति अपने बैग से कुछ निकालना चाहा, अपने बैग से कुछ निकालना चाहा, तो वो डंडे मारने व्यक्ति थोड़ा हट गया, पीछे हट गया। बड़े क्या निकाल रहे हो, बंदूक निकाल रहे हो, बम निकाल रहे हो? तो क्या निकाला उन्होंने, रसगुल्ला निकाला। तो रसगुल्ला तो बम की तरह ही दिखते हैं ना, तो वो व्यक्ति डर गया। पहली बार विदेश की बात है, विदेश में लोगों को क्या बता कि इंडियन स्वीट क्या होता है। तो फिर वो थोड़ा हट गया, उन्होंने कहा कि हमको एक्सप्लोज करना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, ये मिठाई है खाओ, ये बाहर से एक्सप्लोज नहीं होता है, अंदर से एक्सप्लोज होगा भाई, प्रसाद है। तो व्यक्ति जब रसगुल्ला खाया तो उसको बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी इस उसे गुलाब जामुन था वो, तो प्रभुपाद जी उसको बाद में उसका नाम दिया इस्कॉन बुलेट। जो गुलाब जामुन काला वाला होता है ना, गोल वाला गुलाब जामुन, उसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया था इस्कॉन बुलेट। एक बार खाने से आदमी फंस जाता है, भक्त बन जाता है। फिर दूसरी बार जब हरिनाम पार्टी गुजर रहा था तो व्यक्ति छड़ी लेकर के खड़े थे, इस बार वो छड़ी लेकर के खड़े थे मारने के लिए नहीं, वो रसगुल्ला प्राप्त करने के लिए। तो फिर वो भक्त फिर से अपने बैग से रसगुल्ला निकाल कर दिया, वो व्यक्ति खुशी खुशी उसको लिया और खा लिया। तीसरे बार जब हरिनाम पार्टी फिर से गुजर रहा था तो इस बार वो व्यक्ति उस भक्त को अप्रोच किया, कहा कि ये रसगुल्ला कहाँ मिलता है? उन्होंने कहा मंदिर में मिलता है। कौन बनाता है? हमारे गुरु जी बनाते हैं, प्रभुपाद जी बनाते हैं। अच्छा, मैं आऊँगा तो मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा आपको। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो व्यक्ति जो छड़ी लेकर के खड़े हुआ करते थे भक्तों को मारने के लिए, आज मतलब बहुत दिनों की बात हो गए, वो एक मंदिर का प्रेसिडेंट भी बन गए थे। यदि वो व्यक्ति दया नहीं दिखाता या सहनशीलता नहीं दिखाता तो हम लोग उस भक्त को मतलब हमेशा के लिए गवा देते। वो छड़ी के जगह पर हम लोग करताल निकाल करके सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते तो वो व्यक्त भाग जाते। तो इसलिए दया दिखाना बहुत ही आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की